ध्रुव और तारा मौली के घर से वापस लौट चुके थे। उनके बीच इतनी बहस और लड़ाई झगड़े के बावजूद वे मौली के पास से वे तीनों मैप्स लेकर निकल चुके थे, लेकिन लौटते वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर तारा बैठी हुई थी। वो इस वक्त अपने घर जा रही थी क्योंकि उसे अपने कपड़े और बाकी जरूरी सामान लेना था। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा, सिवाय तारा के इस बात के कि वो अपने घर जा रही है। दोनों के बीच अभी भी खटपटी चल रही थी। ध्रुव का ध्यान भी खिड़की से बाहर की तरफ था, तो तारा को यही लग रहा था कि वो उसकी तरफ नहीं देखना चाहता है। वो ध्रुव से और भी चिढ़ गई थी, जबकि ध्रुव उसके घर के रास्ते को गौर से देखना चाहता था। काफी देर ड्राइव करने के बाद तारा गाड़ी लेकर मुंबई के थोड़े आउटसाइड एरिया में आ चुकी थी। वो एक अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकी जहाँ लोग फ्लैट्स में रहते थे। तारा का फ्लैट भी वहीं था। तारा गाड़ी से बाहर उतरी और ध्रुव भी उसके पीछे आया, तो तारा ने उसकी तरफ पलटकर गुस्से में कहा, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, यहीं बैठकर इंतजार करो। लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, क्या पता तुम यहां से भाग गई तो, ध्रुव ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। तारा उसे देखकर कड़वाहट से मुस्कुराई और दांत पीसते हुए बोली, जिस तरह से तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मैं दुनिया के दूसरे कोने में भी चली गई तब भी तुम लोग मुझे ढूंढकर अपने पास वापस ले आओगे, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हें समझ तो आया कि तुम हमसे दूर नहीं भाग सकती हो, गुड फॉर यू, ध्रुव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने उसे देखकर अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। उसने ध्रुव से कोई बहस नहीं की और ऊपर जाने लगी, जबकि उसके रोकने के बावजूद ध्रुव उसके पीछे जा रहा था। तारा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, न जाने कब इस मुसीबत से पीछा छूटेगा, और अब तो मेरी ही बदौलत इसने मेरा घर भी देख लिया है। बहुत मुश्किल से नानू से जिद करके ये फ्लैट खरीदा था, और लगता है कि अब रहने के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तारा लिफ्ट के पास पहुंची तो वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसे मजबूरन सीढ़ियां लेनी पड़ी। ध्रुव उसके पीछे पीछे आ रहा था। रात ज्यादा होने की वजह से आसपास कोई नहीं था। अच्छा, तो तुम यहाँ पर रहती हो, मैं कितना बेवकूफ था ना जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया, और जब मैंने मिली के घर को देखा तो मुझे लगा कि तुम उस घटिया जगह पर रहती हो। मैंने तुम लोगों को कितना अच्छा अपार्टमेंट खरीद कर दिया था, तो ऐसे तुम लोगों के इमोशंस का फायदा उठाती हो। वैसे ये किसने खरीद कर दिया है तुम्हें, ध्रुव ने तंज भरे लहजे में कहा। वो लगातार उसे कुछ ना कुछ सुनाया जा रहा था। तारा रुकी और ध्रुव की तरफ वार्निंग फिंगर दिखाते हुए तेज आवाज में बोली, अपना मुंह बंद रखो वरना सीढ़ियों से नीचे धकेल दूंगी। वो क्या कहते हो तुम कि मार नहीं सकते लेकिन चोट तो पहुंचा सकते हो, ठीक वैसे ही मैं भी नहीं मारूंगी और अच्छी खासी चोट आ जाएगी। ट्राई करके देख लो, तुम्हें साथ में लेकर गिरूंगा, ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें हर काम मेरे साथ ही क्यों करना होता है जबकि तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? मुझे ये जगह कोई भी खरीद के दे, इसे तुम्हें क्या लेना देना है, तारा ने चिढ़कर कहा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और भी लड़का है या नहीं, अगर है तो मैं पहले ही उसे अवेयर कर देता हूँ कि तुम जैसी लड़की की बातों में ना आए, ध्रुव ने जवाब दिया। वो जितना शांत लहजे में बात कर रहा था तारा को उतना ही गुस्सा आ रहा था। कोई नहीं है मेरी लाइफ में, और जैसा तुम्हारे साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है मुझे कोई और चाहिए भी नहीं, तारा ने दांत भींचते हुए कहा और दूसरी तरफ पलट गई। कुछ ही देर में वे तारा के घर के सामने खड़े थे। तारा ने पासवर्ड लगाकर दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई उन्होंने देखा कि अंदर की लाइट ऑन थी। आयुष, और तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है? कोई चोर भला इस तरह लाइट जलाकर चोरी थोड़ी ना करेगा, जरूर कोई इस जगह के बारे में पहले से जानता है, या हो सकता है कि यहाँ आता जाता होगा, ध्रुव ने इधर उधर देखते हुए कहा। घर शांत और साफ सुथरा लग रहा था। सतर्कता दिखाते हुए ध्रुव ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी और उसका सेफ्टी लॉक भी हटा लिया था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कोई दौड़ते हुए बाहर आया। उसने तारा को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम 3 दिन बाद मेरे पास आने वाली हो और हम शादी करेंगे, लेकिन एक हफ्ता बीत गया है तुम नहीं आई और मुझे ही आना पड़ा, उसने अभी भी तारा को हवा में उठा रखा था और उसकी आंखों में देखते हुए शिकायती लहजे में कहा। वो वायु था, तारा का दोस्त जिससे तारा शादी करने वाली थी। वहीं उसकी बातें सुनकर ध्रुव के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। हालांकि उसने तारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और उसकी बातों से भी पता चल रहा था कि वो और तारा एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी ध्रुव ने जानबूझकर उसके पैरों के पास शूट किया। उसने जानबूझकर टारगेट मिस कर दिया था क्योंकि उसका इरादा वायु को डराने का था। वहीं गोली की आवाज सुनकर वायु ने जल्दी से तारा को नीचे उतार दिया था और वे दोनों ही ध्रुव से कुछ कदम दूर हो गए थे। ध्रुव तारा की तरफ घूर कर देख रहा था और उसकी आंखों का गुस्सा वो अच्छे से समझती थी। तारा ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और उसे समझाते हुए हल्के लहजे में कहा, लुक आई कैन एक्सप्लेन यू, तुम इस तरह किसी को शूट नहीं कर सकते हो, ये मेरा फ्रेंड है वायु। तारा बोलते हुए रुक गई, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी ध्रुव ने उसकी बात को पूरा करते हुए ठंडी आवाज में कहा, जिसके साथ तुम शादी करने वाली थी। तारा बिल्कुल शांत हो गई थी और उसकी नजरें झुक गई थी। वो ध्रुव को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो वायु से इसलिए शादी करने वाली थी क्योंकि वो महर से शादी कर रहा था। वो ध्रुव को भुला सके इसलिए तारा ने ये फैसला लिया था। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी वायु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, हम शादी करने वाले थे और अब तक हमारी शादी हो भी चुकी होती अगर तारा मेरे पास पहुंच जाती। वैसे तुम कौन हो, वायु ने ध्रुव को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा। इसका पति, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। क्या
वायु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने तारा की तरफ देखा तो तारा ने हाँ में सिर हिला दिया था। वायु के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। उसने मुंह बनाकर तारा से कहा, बहुत गलत बात है, मैं तुम्हें इतने सालों से प्रपोज कर रहा था और तुम हमेशा मना कर रही थी। तुमने ये कहा था कि तुम अपनी ट्रेनिंग और करियर पर ध्यान देना चाहती हो और किसी से शादी नहीं करोगी। जब तुमने मुझे शादी के लिए हाँ कहा तब अचानक तुमने किसी और से शादी कर ली। वायु के चेहरे पर नाराजगी भरे भाव थे। फिर उसने तारा और ध्रुव की तरफ देखकर आगे कहा, तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो और अगर तुम इसके साथ खुश हो तो कांग्रेचुलेशंस। नहीं, हम खुश नहीं हैं और हमारा डिवोर्स होने वाला है। इसे तुम एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझो। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं शादी से आजाद हो जाऊंगी। तारा ने ध्रुव की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, तब तो मेरा चांस है। वायु तुरंत मुस्कुराते हुए बोला और उसका चेहरा खिल उठा था। हाँ बिल्कुल, तारा ने वायु की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर कहा। कोई चांस नहीं है, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। तारा उसे डांटने वाली ही थी कि तभी उसने ध्रुव के चेहरे के भावों को नोटिस किया। वो काफी सीरियस नजर आ रहा था। तारा ने उसे कुछ कहना सही नहीं समझा जबकि ध्रुव के दिमाग में वायु की बातें चल रही थी। जब उसने ये कहा कि वो काफी वक्त से तारा को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तारा हमेशा मना करती रही थी, तो अचानक तारा ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। अचानक ऐसा क्या हो गया था, ये सोचकर ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई थी।
ध्रुव के कदम वायु की तरफ बढ़ने लगे थे। तारा को यही लग रहा था कि कहीं ध्रुव अपने गुस्से में वायु को चोट न पहुंचा दे। उसने बीच में आना चाहा, लेकिन ध्रुव ने उसे साइड में किया और वायु की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसने तुम्हें शादी के लिए कब हाँ कहा था? भाई, ये सवाल तो मुझसे आराम से भी पूछ सकते हो, इस तरह डराने की क्या जरूरत है? वायु ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। पहले ही ध्रुव ने गोली चलाकर उसे डरा दिया था, ऊपर से उसके चेहरे और आंखों को देखकर उसे और भी घबराहट हो रही थी। मैंने पूछा, उसने तुम्हें कब हाँ कहा था? ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, हालांकि उसने वायु की कॉलर को छोड़ दिया था। वायु के लिए वो बहुत बड़ा दिन था और उसे वो तारीख अच्छे से याद थी। जब वायु ने ध्रुव को वो तारीख बताई तो ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने तारा की तरफ देखा जो नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम दोनों आराम से बात करो, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ, वायु बोला। उसने ध्रुव और तारा को अकेला छोड़ना सही समझा। नहीं, तारा जल्दी से उसे रोकते हुए बोली। इस वक्त वो ध्रुव का सामना नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तारा? वायु ने गंभीर आवाज में पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ तारा का कुछ सामान लेने के लिए आए हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसा करो, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, हम देख लेंगे, ध्रुव ने काफी हल्के अंदाज में कहा। वायु भी थोड़ा रिलैक्स हो गया था लेकिन तारा के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वायु ने बीच में बोलना सही नहीं समझा और वो अपने कमरे में आ गया था। वहीं ध्रुव और तारा लिविंग एरिया में अकेले खड़े हुए थे। देखो, मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो, तारा ध्रुव की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोली। उसका ध्यान ध्रुव के हाथों की तरफ गया जिसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच रखा था। तुमने उससे शादी करने के लिए उस वक्त हाँ कहा जब हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था और हमारे बीच, ध्रुव बोलते हुए रुक गया था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। सिर्फ वायु ही नहीं था जिसे वो दिन याद था जिस दिन तारा ने उसे शादी के लिए हाँ कही थी। ध्रुव को भी वो तारीख, लम्हा और हर एक चीज अच्छे से याद थी जब वो पहली बार तारा के करीब आया था। तुम मेहर से शादी कर रहे थे और मुझे तुमसे आगे बढ़ना था। मेरे लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो किसी और से शादी कर रहा है। अगर तुम अपने इमोशंस को अपने दिल में दबाकर अपने मकसद पर ध्यान दे सकते हो तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी लाइफ में अपने करियर और बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तारा ने धीमी आवाज़ में कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव वायु को लेकर इतना हर्ट होगा। जिस तरह से ध्रुव जता रहा था उससे यही लग रहा था कि वो तारा से इतनी नफरत करता है कि उसकी मौजूदगी तक सहन नहीं कर सकता। तुमने उससे ये क्यों कहा कि हमारे अलग होने के बाद उसके पास एक चांस रहेगा? क्या तुम उससे शादी करने का सोच रही हो? ध्रुव ने तारा की तरफ देखकर अविश्वास भरे भाव के साथ कहा। तारा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, उसने कुछ नया नहीं कहा था, वो वही बोल रही थी जो ध्रुव चाहता था, तो अब ध्रुव को इतना बुरा क्यों लग रहा था? वहीं दूसरी तरफ वायु ने बाहर भले ही ध्रुव के सामने नॉर्मल बर्ताव किया था लेकिन तारा जिस तरह से डर रही थी उसे यही लग रहा था कि ध्रुव उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती कर रहा था। उसने ध्रुव की फोटो खींची और अपने दादाजी को भेज दी थी जो पुलिस विभाग में एक सीनियर ऑफिसर थे